प्रयागराज में याज्ञवल्क्य महाराज को भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा कि राम कौन है। उसके जवाब में राम कथा शुरू हुई, शिव चरित्र सुनाया, शिव जी को प्रश्न पूछा गया और भगवान शिव राम का अवतार क्यों हुआ उनके कारण की चर्चा करते हैं। पहला कारण जय विजय का, दूसरा कारण सती वृंदा का, चौथा कारण नारद मोह का, पांचवा कारण शत्रुपा और मनु के दिव्य तप का, पांचवा कारण प्रताप भानु को ब्राह्मण का श्राप मिला और सकुल नाश हुआ। ये पांच कारण प्रभु के अवतार के बताएं और प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण हुआ। कहे सी बहुरी रावण अवतार, कहे सी
रामचरितमानस में राम जी के जन्म की कथा से पूर्व रावण का जन्म बताया है। पहले अंधेरा आता है, बाद में सूरज निकलता है। पहले निशिचर वंश की कथा बताई, बाद में सूर्य वंश की कथा कहे। प्रताप भानु रावण के रूप में प्रकट हो जाता है, अरिमर्दन उसका भाई कुंभकर्ण के रूप में आता है और धर्मरुचि नामक जो प्रधान था वो विभीषण के रूप में आता है। तो रावण बहुत शक्तिशाली साबित हुआ, तीनों भाई ने बहुत तपस्या की। ब्रह्मा ने आकर वरदान दिया तो कहा कि वानर और मनुष्य के सिवा हम किसी के हाथ न मरे। ब्रह्मा ने तथास्तु कह लिया। कुंभकर्ण की बुद्धि सरस्वती के माध्यम से पलट दी गई और कुंभकर्ण ने 6 मास की निद्रा मांग ली। विभीषण ने मांगा जन्म जन्म भगवंत पद में प्रीत मांग। बाद में रावण की मंदोदरी नामक स्त्री के साथ शादी हुई, अपने दोनों भाइयों को भी ब्याह दिया। मैदानव नामक राक्षस ने समुद्र के बीच त्रिकुट पर जहां यक्ष रहते थे उसको निकालकर एक दिव्य नगरी निर्माण कर दी जिसका नाम लंका रखा। रावण पूरा समाज के साथ लंका में बसने लगा, पूर्ण समृद्धि। इतनी समृद्धि से भी रावण तृप्त नहीं हुआ तो कुबेर का धन भंडार लूट आया। मंदोदरी जैसी अति खूबसूरत नारी थी फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ तो नाग कन्याओं को पाताल से उठा लिया, अपने बाहुबल से कैलाश को उठाकर दुनिया को अपना बाहुबल का दर्शन करवाया। सौंदर्य का शिकारी और दूसरों की संपत्ति की लूट चलाने लगा रहा। अपने परिवार के लोगों को और पूर्ववासियों को भी उसने कहा कि यज्ञ तोड़ो, वेद पुराण की बात बंद करा दो, जहां भी सत्कार्य हो रहा है उसको तोड़ डालिए ताकि देवता वो भूखे बनकर मेरे पास आ जाए, उस बाद में उसको मारना छोड़ना जो करना सो मैं करूंगा। रावण ने अपने परिवार और पुरजनों को ऐसी सूचना दी राक्षस कुल को और उसके आदमी समाज के सभी वर्ग में फैल जाते हैं और समाज को भ्रष्ट करने लगे। नदियों के पानी लाल रंग में मुनियों के खून से रंग दिए गए, यज्ञ बंद होने लगा, वृक्ष काटे जाने लगे, गायों की कत्ल होने लगी, ऋषि मुनियों का अपमान होने लगा। बाबा जी ने लिखा है कि ऐसा समाज रावण ने निर्माण किया जहाँ कोई माता पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, गाय को नहीं मानता, सत्कार्य को नहीं मानता। शिव जी तो व्याख्या कर देते हैं कि पार्वती जिसका ऐसा आचरण हो उसको राक्षस समझ रहे।
मानसकार कहते हैं रावण के त्रास से धरा अकुलाने लगी। गाय का रूप लेकर पृथ्वी ऋषि मुनियों के पास जाकर रोई। 18 भार वनस्पति, इतना बड़ा समुद्र, इतने बड़े बड़े पहाड़, इन सबका वजन मुझे नहीं लगता जितना भार इन पर द्रोहियों का लग रहा है। धरती कब कांपती है जब आदमी धर्म भ्रष्ट होकर कदम रखता है धरती पर, तब धरती कांप जाती है और गाय का रूप लेकर ऋषि मुनियों से शिकायत करती है और तब ऋषि मुनियों का कर्तव्य हो जाता है कि राम का प्राकट्य हो। ऐसा कोई उपाय सोचे, ऐसा कोई उपाय ढूंढे कि समाज में राम का प्राकट्य हो, राम का जन्म हो और संसार को विश्राम प्राप्त हो। तो ऋषि मुनियों को पहले कहा गया और ऋषि मुनि इनमें उतरे, सब देवताओं के पास गए, देवताओं को सावधान किया। देवताओं ने कहा कि हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि अब तो एक ही उपाय बचा, हम सब प्रार्थना करें। शिव जी कहते हैं मैं इस सभा में था देवी। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो सब बिलग बिलग स्थान दिखाने लगे। इसी समय शिव जी ने कहा, मैंने ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, यदि हम में प्रेम है तो भगवान यहाँ प्रकट हो सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे वचन ब्रह्मा को बहुत अच्छे लगे, मुझे साधुवाद देते हुए ब्रह्मा की अगवानी में समस्त देवकुल, समस्त ऋषिकुल, समस्त मुनिकुल और धरती गाय के रूप में इन सबों ने मिलकर परमात्मा के प्राकट्य के लिए इस विराट को प्रार्थना की कि हे हरि, अब तू भारत की भूमि पर आ और हमारी समस्याओं का जवाब दे। और सब भगवान की प्रार्थना करने लगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, समस्त ऋषि मुनि को ब्रह्मा की अगवानी में शिव के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए धरती की समस्या का हल लाने के लिए एक साथ जुटकर इस परम की वंदना और परम की स्तुति करने लगे। तो कहने का मतलब यह स्तुति प्रमाण देती है कि देव ऋषि मुनि सब एक हो गया था, पूरा राष्ट्र, पूरी धरती रावण की समस्या से संसार को मुक्त करने के लिए, दशाननी विचारधारा से राष्ट्र को मुक्त करने के लिए। और फिर घटना ये घटी, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से प्रभु ने कहा कि डरो मत, मैं अंश सहित अवतार धारण करूंगा रघुकुल में, हम चार भाई बनकर आएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर। सब देवता राजी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवता लोग अब वानर रीछ का रूप धारण करके धरती पर पहुंच जाओ। क्या मतलब? पितामह ब्रह्मा ने कहा कि दैवी समाज को चाहिए राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो जाए, अपनी सुंदरता, अपनी पद प्रतिष्ठा को एक और रखकर, सुंदरता को एक और रखकर बंदर भाव से निकल पड़े राष्ट्र को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को एक करने के लिए। सभी देवताओं को गिरिकंदराओं में और वृक्ष की छायाओं में बानर और रीछ के रूप में भेज दिया ब्रह्मा ने, यानी एक सेवका, एक सेवा का, सेवा की दीक्षा दे दी कि जो भोग परायण लोग थे उनको सेवक बना दिए। और जब तक ये लोग भोग परायण रहे, रावण उसको मारता रहा, और वही भोग परायण बंदर भालू बनकर आए तो रावण पर हवा बोल दिया और रावण पर विजय हो गए। सेवा विजय कर सकती, समर्पित जीवन सफलता प्राप्त करता है। बंदर भालू के रूप में धरती भर गई, भगवान राम के जन्म की पूर्व भूमिका हो गई। और गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की ओर गोस्वामी जी गति देते, अब चलिए जहां प्रभु का प्रागट्य हुआ वो अयोध्या में, एक बार भाव और श्रद्धा के साथ अयोध्या का जय जयकार करें। बोलिए अयोध्या धाम की जय। महाराज दशरथ जी का शासन है, रघुकुल मनी है राजन। मानसकार दशरथ जी का परिचय देते हुए बोले, तीनों वस्तु है उनमें, कर्म ज्ञान भक्ति, तीनों योग का समन्वित रूप महाराज दशरथ। धर्म दुरंधर है, धर्म कर्म है, गुण निधि ज्ञानी है, ज्ञानी है, और हृदय भक्ति मति सारंग पाणी, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों महाराज में। महाराज का परिचय,
अवधपुरी रघुकुल मनिया, वेद विदित दस धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति महति सारंग पानी हृदय भगति महति सारंग पानी।
महाराज नु जीवन दिव्य है, बहुत ज्ञान से, धर्म कर्म से और भक्ति से भरा जीवन है। कौशल्यादि प्रिय रानियां, राज महान है, प्रजा महान है, कुलगुरु परंपरा सब महान है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं एक कमी थी, महाराज को पुत्र नहीं था। और एक बार ये पुत्र की कमी की गिलानी महाराज को उदास कर देती है। गोस्वामी जी लिखते हैं
गुरु गृह गए तुरत मगता चरण लागी करी विनय निज दुख सुख सब दूर
यहाँ एक सिद्धांत भी सुन लीजिए कि संसार जब भी जिसको ही मिलेगा अधूरा ही मिलेगा, क्योंकि संसार में पूर्ण मिलने की व्यवस्था ही नहीं। जब भी जिसको संसार मिलता है अपूर्ण ही मिलता है, और परमात्मा जब भी जिसको मिलता है पूर्ण ही मिलता है। परमात्मा में अपूर्ण मिलने की व्यवस्था नहीं और संसार में पूर्ण मिलने की व्यवस्था। इसलिए जब जीवन में कोई कमियां सताए तो ठाकुर जी के पास जाकर रो लेना या कोई संत के पास जाकर रो लेना।
एक बार महाराज के मन में ग्लानी हुई, राजा कौन है? धर्म स्वरूप है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति दशरथ जी को ग्लानी हुई, मानी धर्म धुरंधर को, स्वयं धर्म को ग्लानी हुई, मुझे पुत्र नहीं। और ये वेदना सम्राट, सम्राट के पास सब शिकायत करते हैं, रानियां तक, सम्राट किसको शिकायत करे। लेकिन ये देश की परंपरा देखो, सम्राट के ऊपर भी एक सम्राट था जिसके पास सम्राट रो सकता था, और वो होता था सदगुरु। वशिष्ठ जी थे राष्ट्रगुरु अयोध्या के। एक परंपरा थी राष्ट्रगुरु की कि जिसके पास सत्ता भी जाकर अपनी वेदना कह सके और सम्यक समाधान प्राप्त कर सके। हमारे पास व्यवस्था नहीं है आज, धर्म की गलत व्याख्याएं की जा रही है अपने हेतु के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति को भी एक ऐसी सत्ता के पास जो बिल्कुल निष्काम और तपस्वी रहती थी, इसको संसार से कुछ नहीं चाहिए था सिवाय के जन जन का मंगल हो, जन जन का परम कल्याण हो, ऐसी एक सत्ता रहती थी, और वो सत्ता थी सदगुरु की, राष्ट्रगुरु की। और वहां सत्ता जाती थी, जब जीवन में कमी महसूस हुई तो दशरथ जी किसी को कहे बिना अकेले चल दिए गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वार। और कितना अद्भुत ये मार्गदर्शन है प्राचीन भारतवर्ष का कि तुम्हारे जीवन में कोई कमियां तुम्हें चुभे, कोई अभाव तुम्हें परेशान करे, उद्वेग प्रदान करे, तो दुनिया को क्या कहना मेरे भाई बहन, चले जाओ अपने श्रद्धेय सदगुरु के पास, उनके पास जाकर कहो हमको ये मुश्किल है। अद्भुत मार्गदर्शन था प्राचीन भारत में। और ऐसे राष्ट्र गुरुओं को पूछ करके, इनके अनुशासन में शासन चलता था। परिणाम एक समय ऐसा आया था राष्ट्र में कि देश में छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे इलाके एक देश होते हैं तो इनमें कई आश्रम होते हैं कई, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि पूरा भारतवर्ष एक आश्रम बन गया था। नमे स्तेनो जनपदे, कहीं कोई चोर चोरी नहीं करता था, कहीं कोई मद्यपान नहीं करता था, कोई किसी का अनित का धन नहीं लेता था, हर के आंगन में आहूतियां दी जाती, पूरा राष्ट्र एक आश्रम बन गया था। मानो लगे कि ये पूरा आश्रम है, ये कोई राष्ट्र नहीं है, पूरा एक आश्रम का रूप ले लिया था राष्ट्र। ऐसी एक निष्काम, एक अहेतु, एक सर्वजन हिताय सदगुरु की एक एक स्थिति थी राष्ट्र में। दशरथ जी गए उनके पास, अपने दुख का गान किया, मुझे ये दुख है, और दुख गाते गाते फिर सुख कहने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप तो दुख लेकर आए हैं, सुख कैसे गाने लगे? बोले, महाराज वैसे तो दुखी था, पुत्र नहीं है, लेकिन आपके पास आया तो सुख हो गया। क्यों? कि संत मिलन सम सुख जगना है, संसार में संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं। आपको देखता हूं तो कमियां भूल जाता हूं, सदगुरु को देखता हूं तो उद्वेग शांत हो जाता है। बात क्या है महाराज? बोले, हमारे भाग में पुत्र नहीं है क्या? रघुवंश कल समाप्त तो हो जाएगा, कोई वारिस नहीं। धरहु धीर
होई सुत जाई,
त्रिभुवन विदि राजन थोड़ा धैर्य धारण करो। बाबा हां, तुम्हें एक पुत्र नहीं चार पुत्रों की प्राप्ति। बाबा हां राजन,
चाहत मुनि संता प्रमला बंता पुत्र संता बलवंता, ऐसे महान पुत्र पाए गया जो संसार को उजागर करेंगे। चाहत मुनि संता प्रमला बंता पुत्र संता बलवंता, क्षत्रिवत भारत परम सुदार वंश उद्धार भवतार, कई कई के कारण राज निवारण विपुल वितारण मधमारण भवती दूर तारण जन अधिकारण हर उतारण भगवंता जी भार उतारण भगवंता जी भार उतारण भगवं। चाहत मुनि संता कमला संता पुत्र संता बलवंता, क्षत्रिवत धारण करम सुदार वंश उद्धारण भवतारण, कई कई के कारण राज निवारण असुर वितारण मधमारण भवती दूर तारण जन अधिकारण हर उतारण भगवंता जी भार।
त्रिभुवन को उजागर करेंगे और पुत्र होने के बाद तुम्हारी समस्या ही हल होगी, ऐसा मत समझो। भगत भयहारी, संसार का समस्त जीवों का कल्याण हो जाएगा, सब भक्तों का भय हर लेंगे वो। एक शर्त राजन, यज्ञ करना पड़ेगा। श्रृंगी को बुलाया गया, राम प्रागट्य के पहले यज्ञ है भूमिका, और राष्ट्र में भी कोई घटना घटती है तो पहले यज्ञ होता है, और यज्ञ का मतलब आहुतियां दी जाती हैं, और राष्ट्र में भी जब कुछ नया सृजन होने वाला हो तब कुछ आहुतियां दी जाती हैं। उज्जवल भी और काले तिल होते हैं, सफेद होते हैं, जब होते हैं, आहुतियां कई प्रकार की हो सकती हैं, और ये आहुतियों के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता। प्रधान यज्ञ हुआ है यहां। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा।
और ये आहुति कुभाव से नहीं डाली जाए, किसी के प्रति बुरे भाव से नहीं डाली जाए, राष्ट्र उत्थान के लिए डाली जाए। किसी को मुश्किल हो इसीलिए नहीं। किस तरह आहुति डाली गई?
भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगटे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार सकल काज भा सिद्ध
भक्ति सहित आहुतियां दिया जा रही हैं। पूरी अयोध्या एक यज्ञ की धूम्र शिराओं से व्याप्त हो चुकी थी। अंतिम आहुति जब डाली गई, साक्षात यज्ञदेव अग्नि के रूप में प्रसाद का चरु लिए हुए यज्ञ कुंड से बाहर आए। यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, अग्नि नारायण भगवान की, वेद नारायण भगवान की, सदगुरु भगवान की। अग्नि के रूप में स्वयं बाहर आए, हाथ में प्रसाद का चरु। और ध्यान दो, बहुत महत्व की बात, जो प्रसाद लेकर यज्ञ कुंड से बाहर आए उसने राजा के साथ बात नहीं की, उसने ऋषि के साथ बात की। जब घटना घटती है तब कोई चेतना से के साथ बात की गई कि हे राज वशिष्ठ जी को कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, राजन बीच में नहीं लाए, सत्ता को एक और रख दिया और कहा कि हे ऋषिराज, आपने जगत कल्याण के लिए जो सोचा है सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। दशरथ जी एक और खड़े हैं चुपचाप, जरा भी सत्ता को वहां महत्व नहीं दिया गया। यज्ञ की चेतना ने एक ऋषि की चेतना के साथ संवाद कर लिया। एक दो चेतना का संवाद था, एक दिव्य समझौती थी राष्ट्र मंगल की। राष्ट्र को आराम मिले इसीलिए, राष्ट्र को विश्राम मिले इसीलिए, राष्ट्र को राम मिले इसलिए, एक अद्भुत संवाद, एक 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 बहुत मंगल चर्चा हो गई थी। जो वशिष्ठ
कछु हृदय विचार सकल काज तुम्हारा,
आपने जो सोचा है ऋषि वो तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। और ये जो मैं प्रसाद दे रहा हूं, ये जो कृपा दे रहा हूं, ये अब राजा को दे दो। देखिए निष्कामता ऋषि की और प्रगटी हुई चेतना दोनों की। यज्ञदेव ने कहा कि मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप ऋषि हो, आप सदगुरु हो, तो ये प्रसाद जो है सत्ता को दे दो और उनको कहो कि यथा योग्य इस प्रसाद का वितरण कर दे। वो अकेला खाएगा तो राम प्रकट नहीं होगा, हराम प्रकट हो जाएगा। उसको कहो बांट दिया जाए जथा जोग। हां, बांटने में योग्यता जरूर देखी जाए, पात्रता जरूर देखी, लेकिन प्रसाद को बांटना चाहिए, कहो उनको। और भगवान राष्ट्र में जिस जिन जिन पर सबके ऊपर बिलक बिलक कृपा प्रभु की उतरी हुई है होती है, भगवान की कृपा जिस पर जिस ढंग से हुई हो, इसको कृपा समझना, प्रसाद समझना। और प्रसाद को भारतवासियों अकेले मत खाना, बांट कर खाना, सबको देना, ताकि हर आंगन में राम हो जाए, हर के आंगन में प्रभु का एक निवास हो जाए, हर घर अयोध्या बन जाए। तो प्रसाद यानी कृपा बांटो, अकेले मत खाओ, बांटना चाहिए प्रसाद। ये थी आज्ञा, कोई व्यक्ति की नहीं, यज्ञ पुरुष की आज्ञा थी। और यज्ञ को, अग्नि को किसी का स्वार्थ नहीं होता, अग्नि को किसी के प्रति पक्षपात या राग द्वेष नहीं होता। उसे परम चेतना ने ये सुझाव दिया था कि ये बांट दो, राजा को दो, और इतना कहकर अदृश्य हो गया। क्या लेना देना था यज्ञ पुरुष को, अदृश्य हो गया, अपनी बात पूरी करके चला गया, कोई लेना देना नहीं था। दशरथ जी ने प्रणाम किया, प्रसाद दशरथ जी के हाथ में गया और कहा कि ये हवि अपनी रानियों को बांट दो।
प्रसाद लेकर महाराज राजभवन में भीतर तीनों रानियों को प्रसाद बांटते हैं। ये प्रसाद का बंटवारा जरा सोच और विचार मांग लेता है। आधा प्रसाद कौशल्या को दिया, आधा जो बचा उसमें से दो हिस्से बनाए, पा भाग का प्रसाद श्री कैकेयी को दिया, पा जो बचा उसका दो भाग करके एक कैकेयी के हाथ में और एक कौसल्या के हाथ में देकर कहा कि तुम दोनों रानी सुमित्रा को दे दो। तो दोनों ने सुमित्रा को दिया। राष्ट्र की कोई बहुत बड़ी व्यक्ति हमारा सम्मान करे और इतनी बड़ी व्यक्ति के द्वारा सम्मानित व्यक्ति सम्मान पाने के बाद मंच पर से किसी व्यक्ति को देख ले और दौड़कर उसके चरणों में वंदन करने लगे तो सबसे श्रेष्ठ सम्मान उसी व्यक्ति का माना जाता है कि राष्ट्र की इतनी बड़ी ने उसका सम्मान किया, वो तो उसको झुक रहा है। तो महाराज दशरथ जी ने पहले कौशल्या और कैकेयी का सम्मान किया, लेकिन दशरथ जी के द्वारा सम्मानित दोनों रानी अब अपने हाथ में प्रसाद लेकर सुमित्रा का सम्मान कर रही। तब सुमित्रा को लगा कि सबसे बड़ा सम्मान मेरा हुआ, आंख में अश्रु आ गए और गदगदित भाव से बोल उठी मन में कि तुम दोनों माताओं ने इतना बड़ा मुझे मेरा सम्मान किया तो उसका बदला मैं कैसे दूं। भगवान करे आप दोनों के हाथों से जो प्रसाद मुझे मिला और उस दो प्रसाद के दो भाग से यदि मुझे दो पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो कौशल्या माँ एक बेटा तेरे बेटे की सेवा में समर्पित कर दूंगी और दूसरा बेटा कैकेयी अम्बा तेरे पुत्र की सेवा में समर्पित। आपके सम्मान का प्रतिउत्तर केवल मेरे पास इतना ही है। या तो एक कथा ऐसी भी सुनी है, महात्मा लोग कहते हैं कि आधा भाग कौशल्या जी को दिया, बाद में कैकेयी को दिया और पा भाग सुमित्रा जी को, लेकिन सुमित्रा के हाथ से जब वो खीर या यज्ञ प्रसाद रहा वो एक समड़ी पंखी आकर उठा ले गई, ऐसा कुछ कथा है। तो सुमित्रा जी के आंख में आंसू आ गए, मेरा प्रसाद चला गया तो मुझे तो पुत्र नहीं मिलेगा। तो कौशल्या और कैकेयी ने कहा माताजी रोना मत, अभी हमने हमारे प्रसाद का भक्षण नहीं किया, हम हमारे प्रसाद से आपको दे देते हैं। तो कौशल्या माँ ने अपने प्रसाद से थोड़ा दिया और कैकेयी माँ ने दिया तो वो सुमित्रा जी को मिला और ये दो प्रसाद के हिस्से से माँ को आनंद हुआ। और कथा ऐसी मिलती है कि जो पंखी प्रसाद लेकर उड़ पड़ा था वो जहाँ अंजनी माता तपस्या करती थी वहाँ जाकर उसकी चोंच से छुट गया और अंजनी के हाथ में आया और इस प्रसाद को अंजनी ने पाया और इस माध्यम से इस प्रसाद की कृपा से अंजनी माता के उदर से हनुमंत बाबा का प्रागट्य हुआ। ऐसी कथा हम संत लोग से सुनी है हमने, ऐसी कुछ कथा है। यहाँ तो बाबा जी केवल इतना ही कहते हैं माताओं ने प्रसाद अपने उदर में रखा और परमात्मा ने अपनी शक्ति प्रदान की, माता सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी,
मंदिर में शकुन होने लगे, माताओं का रूप बदलने लगा और ऋषियों की एकता ने, दैवी समाज की प्रार्थना ने, दो चेतना की समझूती ने एक ऐसा प्रसाद वितरण कर दिया कि वातावरण सगर्भ हुआ और इस गर्भ से राम की प्राप्ति हो गई। ऐसे सकून, ऐसी भनक सुनाने लगे, मंदिर में सब राजे माताएं मंदिर में सो रही। स्वामी जी कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ राम गर्भम। देखिए करुणा, देखिए हरि की, जिसके गर्भ में समस्त ब्रह्मांड, वो आज कौशल्या के गर्भ में आए और प्रभु का गर्भ में आना समग्र जगत में सुख शांति फैलने लगी। सुख जुत काल बीतने लगा है।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस याति सीता मंदिर
शुक्ला नवमी का दिन है, भगवान भास्कर अपनी दिव्य किरणों से पूरी अवध को आलोकित कर चुके थे, भगवान का प्रागत्य होने वाला था। तब सब तिथियां भगवान के पास प्रार्थना करने गई अपना अपना प्रस्ताव लेकर कि आप हमारी तिथि में प्रकट हो जाएं। प्रतिपदा से शुरुआत हुई, भगवान को प्रतिपदा कहने लगी कि आप भी एक हैं, मैं भी एक हूं, हमारी जाति मिलती है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान ने कहा लाइन बड़ी लंबी है, मैं सबको पूछ लूं, बाद में फैसला करो। तो द्वितीया ने भगवान को कहा कि नहीं महाराज, आप मुझ में प्रकट हो जाएंगे क्योंकि मैं बड़ी तिथि हूँ, अषाढ़ की द्वितीया, महामास की द्वितीया, तो आप मुझ में प्रकट हो जाइए। तो तृतीया बोली नहीं, आप मुझ में प्रकट हो जाइए क्योंकि मैं अक्षय तृतीया, मेरी कितनी बड़ी महिमा है। तो चतुर्थी बोली कि नहीं, मैं तो गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता को पूजा रखती हूँ, तो आप मुझ में प्रकट हो जाइए। तो पंचमी बोली मैं वसंत पंचमी, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। षष्ठी बोली कि हमारे गुजरात में रांधण छठ कहते हैं, आप हमें प्रसन्न प्रकट हो जाए। सप्तमी बोली मैं शीतला सप्तमी, आप मुझ में प्रकट हो। अष्टमी बोली मैं दुर्गाष्टमी हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाए। भगवान सबकी बात सुनते थे, लेकिन जब नवमी की बारी आई तो भगवान ने देखा कि वो कुछ बोली नहीं, रोती रही। राम नवमी का दिन, एक अर्थ इस चौपाई का ये भी हो सकता है कि त्रेतायुग में राम नवमी के दिन भगवान प्रकट हो गए, लेकिन हमारे लिए जिस दिन जिस तिथि में भगवान प्रकट हो जाए वो तिथि को नमस्कार, नवमी तिथि, वही तिथि को हमारा नमन, वही मास हमारे लिए मधुमास, वही पक्ष हमारे लिए शुक्ल पक्ष, वही तिथि हमारे लिए नवमी है, जिस तिथि में परमात्मा का प्रागत्य हमारे जीवन में हो जाए। तो नवमी का दिन है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, सूर्य नारायण ऊपर आ चुके हैं, न बहुत धूप है, न शीतलहर है, बहुत ठंडी है, पावन समय है दोपहर का। समय कितना प्यारा चुना राम और कृष्ण ने। राम जी ने दोपहर 12 बजे का समय मध्य दिन, श्री कृष्ण ने रात्रि का मध्य भाग चुना। क्यों? या तो एक सूर्य वंश के हैं, एक चंद्र वंश के हैं, इसलिए एक ने रात्रि और एक ने दिन कबूल कर लिया, या तो ये दोनों अवतारों ने हमको बताया कि दुनिया में ये दो समय जो संभाल लेता है वो साधु चरित हो जाता है। दोपहर के 12 बजे हर जीव को भूख सताती है, रात्रि के 12 बजे हर एक को काम सताता है। राम जी ने कहा कि मध्य दिन में आपको भूख सताए तो मेरा सिमरन करना, मैं भूख से मुक्त कर दूंगा, विश्राम दिलाऊंगा। कृष्ण ने कहा कि रात्रि को कामना सताए तो मेरा सिमरन करना, मैं कामना से मुक्त कर दूंगा।
त्रेता युग, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजीत, वो समय निकट आने लगा। पूरा राष्ट्र करवट बदलने जा रहा था। जैसे जैसे वो दिन करीब आया, अयोध्यावासी एक दूसरे से बात करते हैं तो रो पड़ते, कुछ होगा, हमको सुकून हो रहा है। अवधवासी अपने अपने आंगन में गड्ढा करते हैं तो कंकर की जगह मणि निकलने लगे। यज्ञ में बिना आहुति डाले अग्नि प्रज्वलित होने लगा। राम प्राकट्य का समय निकट हुआ। पूरी प्रकृति सज धज के परमात्मा के स्वागत के लिए तैयार हुई थी। हम द्वार खोल कर बैठे हैं, तुम आ जाओ भगवान, हमने हमारे दरवाजे खुले कर दिए, अब तुम आओ। आसमा प्रसन्न था, दिशाएं शुद्ध थी, सरजू के आनंद की कोई सीमा नहीं थी आज, क्योंकि सरजू को लगा कि हम नदियों को समंदर के पास जाना पड़ता है, आज समंदर स्वयं अयोध्या आ रहा है, परमात्मा स्वयं आ रहा है। और गोस्वामी जी की लेखनी में हर्ष समाया नहीं आज, लिखते हैं योग लगन ग्रहवार तिथि सकल है अनुकूल चर अनुचर योग लगन ग्रह बार तिथि पांचों अनुकूल हो गए। चार अचर प्राणी मात्र हर्ष से भरे हैं क्योंकि राम जन्म राम प्राकट्य सुख की जड़े हैं। और वो पावन तिथि जिस तिथि ने भारत को भारत बनाए रखा, जिस तिथि ने हमको सिर ऊपर रखकर चलना सिखाया। मैं कई बार पूछ चुका हूं मेरे श्रोताओं को, इस देश में रामनवमी न होती, जन्माष्टमी न होती, शिवरात्रि न होती, गणेश पूजा न होती, दुर्गा पूजा न होती तो ये देश क्या होता? हम समृद्ध है, हम धनी है इन अवतारों के कारण। आज वो तिथि रामायणी परम रामायणी साकेतवासी बिंदु जी ने ठीक कहा था कि हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है नवमी। वो दिन आया, गदगद भाव में डूबे थे अवधवासी, महाराज को मंगल शकुन हुए जा रहे थे और इस पावन तिथि की घोषणा बाबा जी की ओर से।
Oh,
मध्यान्ह का सूर्य हुआ है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, नई साल के प्रथम नवरात्र पूरे हुए, चैत्र मास से नई साल शुरू, प्रथम रात्रि के प्रथम नए वर्ष के प्रथम ये शक्ति पूजा के दिन नवरात्र, वो दुर्गा पूजा के दिन पूरे हुए और शक्तिमान प्रगटने को है। वसंत ऋतु चल रही है, ऋतुओं में राजा वसंत है, राजा धीराज के घर प्रभु आ रहे हैं, इसलिए वसंत ऋतु पसंद की। भगवान कृष्ण किसान वैश्य के घर आए इसलिए वर्षा ऋतु पसंद की, क्योंकि उनको किसानी करनी है, गोपालन करना, इसलिए वो वर्षा में आए। भगवान राम मध्यान्ह को आए क्योंकि उसका धवल पक्ष है, उज्जवल पक्ष है, धर्म पक्ष है, इसलिए उजाले में आए। भगवान कृष्ण का पक्ष, देश काल का वातावरण बदल चुका था इसलिए कृष्ण का पक्ष भिन्न था, इसलिए वो कृष्ण पक्ष में आए। अथवा तो संतों ने कहा कृष्ण को चोरी करनी थी, लीला करनी थी तो रात अच्छी रहे, वैसे तो दिन में ही माई लूट रहते थे, लेकिन दूसरी बात कृष्ण को रास रचना था और बिना रात्रि रास नहीं ठीक लगता, इसलिए उन्होंने रात्रि पसंद की, राम जी ने दिन पसंद किया। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा, अचानक ये वायु की लहर पाकर अनुभव करके किसी ने पूछ लिया वायुदेव को कि आप अयोध्या में इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्या बात है? तो वायुदेव ने कहा मुझे मत रोको, आज मैं बहुत खुश हूं। बोली है क्या? बोले जिसका जन्म होने वाला है ना, वो ब्रह्मा आने वाले हैं ना राम, उनकी सेवा में मेरा बेटा पवन पुत्र हनुमान जाने वाला है, इसलिए बाप को प्रसन्नता है कि आज मेरा पुत्र भी प्रभु की सेवा में काम करेगा, मेरा आगे मेरा पुत्र, इसलिए पिता राजी है। मंद सुगंध सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन, देवता हर्षित है, संत लोग आनंद में डूबे हैं, और मानसकार कहते हैं बन कुसुमित, संसार के जितने बन थे वो फुलित हो गए, उसके फूल लग गए। किसी ने बनराय को पूछा कि आपको फूल क्यों लग गए, वन आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो वन ने जवाब दिया कि हम इसीलिए राजी हैं कि भले राम आज अयोध्या में प्रगटे लेकिन 14 साल वन में रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, इस खुशी की हम आज से खुशी मना रहे, इसलिए वन राजी हो गए। पुष्प कलियां खेलने लगी, किसी ने फूलों को कहा तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, बोले हमने सुना है कि राम जनकपुर जाएंगे और जनकपुर की पुष्प वाटिका में जाएंगे तो कलियों को और फूलों को अपने हाथों से चुनेंगे, उस दिन हम कृतकृत्य हो जाएंगे, मानो उत्सव महोत्सव आज मनाने लगे। किसी ने पहाड़ों को कहा कि पर्वतों आप में से मनिया क्यों निकलने लगी, आप इतने खुश क्यों है, पर्वतों ने कहा हम इसलिए खुश हैं कि जब से हमारी बेटियों को विदा दी है ना, नदियों नदी पर्वत की पुत्री है, और वो ससुराल गई समंदर गई ना, फिर पता नहीं कैसा दुर्भाग्य बाप बेटी की कभी मुलाकात नहीं होती, अब ये मौका है, हमने सुना है राम सेतु बनाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ उनके वैष्णव उनके भक्त समंदर में डालेंगे, तो हमको जब समंदर में डालेंगे ना तब हम कई सालों के बाद हमारी बेटियों को मिल लेंगे समंदर में, इसलिए मानो हर पर्वत बाप का हृदय लिए हुए प्रसन्न है। मणियां निकलने लगी, किसी ने मणियों को पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, मणियों ने कहा राम जी के नाम के पीछे हमारा नाम लगेगा, लोग उनको रघुवंश मणि कहेंगे, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। नदियों को पूछा कि तुम में अमृत बहा जा रहा है, क्या बात, बोले हमको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। किसी ने पूछा तुम तो समंदर में रहती हो रोज, वहां तुम्हारा निवास है समंदर की ओर, और वहां तो भगवान शेषशायी रोज निवास करते, तो वहां दर्शन नहीं कर लेती भगवान का, बोले ससुराल है इसलिए पर्दा रखना पड़ता है, इसलिए दर्शन नहीं कर पाते, आज तो अयोध्या में आएंगे तो हम साफ साफ दर्शन कर लेंगे, इसलिए अमृत बहने लगा नदियों में, पूरी भूमि प्रसन्न और गदगद थी, वो क्षण क्षण बिल्कुल करीब थी, देवताओं के समस्त विमान ब्रह्मा की अगवानी में आकाश में आ गए, पूरा गगन एकदम संकुल हो गया, कहीं आकाश नहीं दिखाई दे रहा है, जय हो की ध्वनि हो रही थी, और ब्रह्मा जी अगवानी लेकर खड़े हैं, आकाश में से देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू कर दी है अयोध्या पर, सुमन वृष्टि हो रही है, दुंदुभि नाद बजने लगे हैं। हर अंतःकरण में एक उल्लास, एक आनंद की लहर छा गई थी। कोई समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। पाताल के नाग देवता, धरती के मुनि देवता और आकाश के ये लोग सूर्य जो देवता है, ये तीनों ने प्रभु की गर्भस्तुति की, अपनी अपनी स्तुति। सबने मिलकर फिर एक बार स्तुति करी कि महाराज विलंब न करें, अब प्रकट हो जाएंगे। और देवताओं ने जब विनती करके अपने विमानों को अपने विश्राम स्थान की ओर हटाए, क्योंकि भगवान का निर्णय है कि विश्राम के समय प्रकट होना है, और देवता लोग रास्ते में है तब तक उनको विश्राम नहीं, वो अपने भवन चले जाए तब जग निवास को प्रकट होना है। बिल्कुल मध्याह्न का समय, भारत वर्ष का ही नहीं, विश्व का ही नहीं, त्रिलोक का भाग्य था कि यही राम के द्वारा राम राज्य त्रिलोक में फिर बाद में फैला था। इसलिए पूरा संसार प्रसन्न था। और मेरे बाबा जी की घोषणा, देवताओं के विमान अपने अपने लोक में जाकर विश्राम की ओर, और जग निवास परमात्मा अखिल लोक को विश्राम देने वाले राम, सबको सुख शांति और परम विश्राम का वरदान देने वाले प्रभु, तमाम को गोस्वामी जी कहते हैं जग निवास है ये हरि, और सकल लोक विश्राम है, कोई भेद नहीं है राम को, समस्त लोक को विश्राम देने वाले ये परम सत्ता, ये भगवान राम गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रगटे हुए। कौसल्या अंबा के महल में प्रकाश हुआ। मानो सोचा ये क्या हो रहा है। जग निवास प्रभु प्रगटे हुए। राम अंधेरे से नहीं प्रकटा है, उजाले से प्रकटा है। एक प्रकाश होने लगा चारों ओर, और मां कौसल्या के सन्मुख एक प्रकाश पुंज से कुछ अवतरित हुआ। अखिल लोक विश्राम का दर्शन हुआ, और चतुर्भुज रूप में परमात्मा को देखा। और एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार कर लीजिए, बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान। और मानसकार ने घोषित कर दिया, हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या गीत हर्षित महकारी मुनि मान हारी अद्भुत तन धान श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण वर्ण माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कंदुइ कर जोड़ी अस्तुति तोरी जा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना प्रभु प्रकट हुए। संतों ने अर्थ निकाले कि भगवान चतुर्भुज क्यों हुए, मानो कौशल्या जी को दिखा रहे हैं कि हम चार भाई होंगे इसलिए चतुर्भुज, धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा करेंगे इसलिए चतुर्भुज। व्यक्ति का गृहस्थाश्रम हो, ब्रह्मचर्याश्रम हो, वानप्रस्थ हो कि संन्यास आश्रम हो, चारों आश्रम की धन्यता हम कर देंगे। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, चारों वर्णों को कृतकृत कर देंगे। चौथी अवस्था में महाराज के द्वार पधारे इसलिए चार भुज लिए हुई आए, अथवा तो हम सबको ये बताना चाहते थे कि हमारा आश्रय करेंगे, उनका काम दो हाथों से नहीं चार हाथों से हम कर देंगे इसलिए चार हाथ लिए, अथवा तो विप्र, दैनु, सूर और संत चारों के लिए आए उसकी और संकेत करने के लिए भगवान चतुर्भुज हुए।
भगवान ने सब बातें माँ को बता दी कि मैं इसलिए आया हूँ, ये करना है सब। हमने संतों से सुना कि बाद में माँ मुंह फेर देती है। भगवान कहते हैं मैं तेरे घर प्रकट हो गया और तुम मुंह फेर बैठी हो। बोले क्षमा करे प्रभु, आप आए, मैंने प्रार्थना कर ली, स्वागत कर लिया, लेकिन मैं मुंह इसलिए फेर रही हूँ कि आप वचन चुक गए हैं। परमात्मा ने कहा अरे माँ, मैं यदि वचन चुक जाऊँ तो ये ब्रह्मांड का लय हो जाए। बोले आपको शायद भावावेश में पता नहीं रहा लेकिन आप वचन चुके हैं। क्या? बोले आपने कहा था हम मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, आज आप पिता बनकर आए। महाराज मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे पुत्र रूप चाहिए। आर्य नारी की गोद में और भारतीय माता के दूध में कितनी ताकत होती है, उसके वात्सल्य में कितना आनंद होता है, ये यदि देखना हो तो हुक्म किया है, प्रार्थना नहीं की जाए शिशु लीला। आप शिशु बन जाइए, आप बालक बन जाइए, भक्ति में सब क्षमता है। और माँ की बात जब बालक बन जाओ ये सुनी और भक्ति का भाव जब सुना तो परमात्मा तुरंत रो लेते हैं। मानसकार कहते हैं परमात्मा को आदेश हो गया कि आप बालक बन जाइए, मुझे ये रूप पसंद नहीं। और जब सुना भगवान ने उसी वक्त मानसकार कहते हैं सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वचन सुजाना कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरि पद भगवान बाल रूप धारण कर लेते हैं। और बालक रूप लेते ही भगवान ने रोना शुरू किया, राम जन्म हुआ। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए बोलिए राम चंद्र भगवान। शिशु रुदन सुनकर सब दासियां रानियां संभ्रम होकर महल में आ गई। माँ की गोद में अलौकिक बालक के दर्शन करते करते सब भावा भाव में डूब चुके हैं। मानसकार कहते हैं राज दरबार में जाकर समाचार दिया गया, महाराज बधाई हो, आपके घर लाला भयो हैं। महाराज दशरथ जी परमानंद का अनुभव करने लगे। वशिष्ठ आदि विप्र वृंद को बुलाए गए और महाराज ने स्पष्ट सूचना दे दी। मानसकार लिखते हैं परमानंद पूरी मान कहा बुलाई बजा शुरू हुआ।
आप सबको पूरे राष्ट्र को राम जन्म की बधाई हो।
वे।